है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिला। आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए से मिलाना है। एक आग हर दिल में।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी सहायता के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए जिसके द्वारा आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। इस समय जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट आपके वचन को सुन रहे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन की जरूरतों को उन्हें समझाने पाए। पवित्र आत्मा, आप उनकी सहायता करें ताकि हर एक जन आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल सके। हमारी प्रार्थना है हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए भी जो इस समय निराश हैं, चिंता में हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उन पर भी दया दृष्टि करें, उनके हर एक प्रकार की पारिवारिक समस्याओं का समाधान आप करें, ताकि पति पत्नी एक दूसरे को प्यार दे सकें, बच्चे अपने माता पिता का आदर दे सकें। हाँ प्रभु, आप हर एक पर अपने आशीष प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि प्रभु यीशु ने सातवीं अर्थात अंतिम मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, सातों तुरहियों का फूंका जाना। हम देखेंगे पृथ्वी पर दंड आने की तैयारियां हो रही है। यह सन्नाटा पृथ्वी पर दंड की, आंधी के आने की एक निर्वता है, सूचना है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी हमारे घर में जहां भी हम जाते थे आंधी से सुरक्षा के लिए तहखाना बनाते थे, और जब हम कहीं बाहर निकलते थे तो हमेशा हमारे हाथों को थामे रहते थे। मैंने अपने बचपन का आधा समय इन्हीं तहखानों के निकट व्यतीत किए हैं। एक दिन संध्या के समय मेरे पिता और मैं तहखाने के द्वार पर खड़े थे। मेरे पिता ने उस उठती हुई आंधी को देखा। उन्होंने देखा कि आंधी हमारे छोटे नगर की ओर नहीं आएगी, और आंधी वास्तव में नहीं आई, परंतु निकट के नगर में बहुत सारी तबाही हुई। कारण यही था कि यह आंधी 15 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरे प्रियो, मैंने देखा कि आंधी से पूर्व वहां पूर्ण निर्वता थी। हवा, वर्षा की बूंदें, गर्जन और बिजली एकाएक शांत हो गई, और कुछ क्षण वहां मौत की सी शांति छा गई, और फिर ऐसी हवा चली कि जैसी मैंने कभी नहीं देखी थी। वह बवंडर तो नहीं था, परंतु प्रचंड वायु थी। आंधी अपनी पूर्ण प्रचंडता पर थी। महाक्लेश इसी प्रकार पृथ्वी पर आएगा और हमारे सामने तुरहियों के फूकने के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 8 उसके 2 से अध्याय 11 तक का विषय यही होगा। तो आइए हम देखेंगे सोने का धूप दान लिए वेदी के निकट एक स्वर्गदूत। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 8 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें सात तुरहियां दी गई। ये सात स्वर्गदूत जिनका यहां पर उल्लेख किया गया है, उन्हें एक विशेष दल बताया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें जिब्राइल भी है, क्योंकि हमें बताया गया है कि वह परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। लुकरची सुसमाचार 1 अध्याय के 19 पद में उसने यहुना बपतिस्मा देने वाले के पिता को दर्शन देकर यहुना के जन्म की घोषणा करते समय अपना परिचय इस प्रकार से दिया था, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। यशाया नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद से प्रकट है कि साराब भी परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये सात स्वर्गदूत सरापों से अलग हैं, क्योंकि उनके कार्य और सेवा सर्वथा भिन्न है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं सात तुरहियां इसराइल के लिए इनका विशेष अर्थ था। मैं नहीं चाहता कि आप इससे चूकें, क्योंकि मैं इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। यहां आकर पुराने नियम के ज्ञान का महत्व प्रकट होता है। गिनती की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया था कि वह चांदी की दो तुरहियां बनवाए, दो का अंक गवाहों की संख्या को दर्शाता है। परमेश्वर ने अनेक बार कहा है कि दो गवाह होने पर कोई बात सिद्ध की जाएगी। ये दो तुरहियां जंगल में प्रस्थान के समय दो प्रकार से काम में ली जाती थी। वे सभा को एकत्र करने के लिए तथा प्रस्थान के लिए फूंकी जाती थी। गिनती की पुस्तक 10 अध्याय उसके दो पद में लिखा है, चांदी की दो तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। जब इसराइल प्रतिज्ञा के देश में आ गया तब ये तुरहियां अन्य दो उद्देश्यों के निमित्त काम में ली जाने लगी थी। गिनती की पुस्तक 10 अध्याय के 9 और 10 पद में लिखा है, और जब जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरहियों को सांस बांध कर फूंकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्व में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मेरे प्रियो, एक तुरही फूंकने पर इसराइल के प्रधानों को मूसा के पास एकत्र होना था। गिनती की पुस्तक 10 अध्याय के 4 पद में लिखा है, परंतु यदि एक ही तुरही फूंकी जाए तो प्रधान लोग जो इसराइल के हजारों में मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। मेरी समझ में यह अकेली तुरही पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 51 और 52 पद में पौलुस द्वारा व्यक्त अंतिम तुरही है। कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, दुर्भाग्य से कुछ लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय की अंतिम तुरही को प्रकाशित वाक्य की सातवीं तुरही कहते हैं। इन दोनों में तो कोई संबंध है ही नहीं। अब देखिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय के 16 पद में पौलुस क्या कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। कहता है ललकार, प्रभु यीशु की आवाज होगी। प्रधान स्वर्गदूत का शब्द से अभिप्राय है कि प्रभु यीशु की आवाज ऐसी होगी जैसे प्रधान स्वर्गदूत की। तब कहता है परमेश्वर की तुरही, यह भी प्रभु यीशु की आवाज है, उसकी आवाज तुरही फूंकने जैसी होगी। अध्याय 1 पद 10 में यूहन्ना कहता है कि उसने तुरही का सा बड़ा शब्द सुना और पलट कर देखा कि वह प्रभु यीशु है। महिमामय मसीह अपनों को पृथ्वी पर से उठाएगा। जब पौलुस कहता है कि अंतिम तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे जी उठेंगे, तब उसका अर्थ प्रभु यीशु की पुकार से है। यह उसकी अंतिम पुकार है और कलीसिया के लिए है। जी हाँ, इसी कारण इसे अंतिम तुरही कहा गया है। परंतु इसका पुराने नियम का प्रतीक वह चांदी की तुरही इसराइल के प्रधानों को एकत्र करने के लिए थी। एक तुरही का फूंका जाना इसराइल के प्रस्थान का द्योतक नहीं था, तथापि तुरहियों का फूंका जाना इसराइल के प्रस्थान का प्रतीक था, और प्रत्येक भाग के चलने के लिए भी तुरही फूंकी जाती थी। तीन तीन गोत्रों के 4 भाग किए गए थे जो मिलाप वाले तंबू के चारों ओर छावनी डाले हुए रहते थे। इसके साथ ही लेवियों के 3 परिवार मिलाप वाले तंबू का सामान लेकर चलते थे। ये कुल कोहात, गिरशोन और मरारी ये ही थे। चार और तीन का योग सात होता है, अतः इसराइल के प्रस्थान के लिए सात बार तुरही फूंकी जाती थी। तुरही पहली बार फूंकी जाती थी तब वाचा का संदूक कुहातियों के कंधों पर कूच करता था। इसके बाद यहूदा के गोत्र के साथ दो और गोत्र यहूदा के झंडे के अधीन चलते थे। इस प्रकार वे सब एक एक करके चल पड़ते थे। हर एक मनुष्य अपना स्थान जानता था और अपने पड़ाव ही में रहता था। इसराइल के शिविर में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं थी। प्रेरित पौलुस कहता है कि कलीसिया में संपूर्ण व्यवस्था के साथ आदरणीय व्यवहार होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कलीसिया में वैसी ही सुव्यवस्था हो जैसी इसराइल के जंगल प्रस्थान के समय थी। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें चलाने के लिए तुरही सात बार फूंकी जाती थी। मेरे प्रियो, इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य की ये सात तुरहियां इसराइल के प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश के व्यवहारिक परिणाम को प्रकट करेंगी। मेरा यह मानना है कि ये सात तुरहियां संपूर्ण इसराइल को पुनः स्वदेश ले आएंगी। यह एक और कारण है कि मैं उनके आज के स्वदेश वास को भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं मानता हूं। यह भविष्यवाणी महाक्लेश के युग में सात तुरहियों के फूके जाने पर होगी, जैसे जंगल में प्रस्थान के समय तुरहियां फूकी जाती थी। सातवीं तुरही के बाद अध्याय 12 में इसराइल को परमेश्वर की सुरक्षा का विशेष पात्र बताया गया है। अतः तुरहियों के समझने पर कलीसिया के लिए फूकी जाने वाली अंतिम तुरही को हम प्रकाशित वाक्य की सात तुरहियों में से एक समझने की भूल कभी नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, जिस प्रकार यरीहो की शहरपनाह गिराने के लिए तुरहियां फूंकी गई थी, उसी प्रकार महाक्लेश के युग में परमेश्वर के विरोध की दीवारें गिर जाएंगी। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर फिर से आएगा, तब वह परमेश्वर और अपने विरुद्ध विद्रोह का अंतिम अवशेष भी समाप्त कर देगा और इस पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करेगा। यह पुस्तक हमारे परमेश्वर के लिए विजय और हर्षोल्लास की पुस्तक है। अंत में इसमें हल्लेलुया का गीत है और संभवतः आप और मैं जब वहां होंगे तब हम भी इस गीत को गा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा हुआ है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। कहता है एक और स्वर्गदूत, यह निश्चय ही प्रभु यीशु नहीं है। इस समय प्रभु यीशु कलीसिया का मध्यस्थ नहीं है। अध्याय 4 और 5 में हमने देखा था कि वह उस स्थान से हटकर सात मुहर लगी पुस्तक लेता है और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में उसके बाद जो कुछ भी दर्शाया गया है वह सब प्रभु यीशु के अधिकार में है। वह इस पृथ्वी के रंगमंच पर नायकों में से एक नहीं है। जी हां, वह स्वर्ग में कलीसिया के साथ है परंतु मध्यस्थ नहीं है। अब वह न्याय करने के पद पर है। वह अधिकार उसे प्राप्त है। वह सात मुहरों वाली पुस्तक को हाथ में लेकर अपने सिंहासन से सब गतिविधियों को संचालित कर रहा है। यह स्वर्गदूत कोई और स्वर्गदूत है। मेरे विचार में प्रभु यीशु को हम यह स्वर्गदूत नहीं कह सकते। यह सच है कि पुराने नियम में देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु स्वर्गदूत के रूप में प्रकट होता था, परंतु अब वह स्वर्गदूत के रूप में प्रकट नहीं होगा। वह अपनी महिमामय देह में ही प्रकट होगा और एक दिन हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यहां पर आगे लिखा है, सोने की उस वेदी पर। यह वह स्थान है जहां प्रार्थनाएं चढ़ाई जाती हैं। प्रभु यीशु इस सोने की वेदी पर मध्यस्थता नहीं कर रहा है, वह सिंहासन पर बैठा है। धूप प्रार्थनाओं का प्रतीक है और हम भजन संहिता 141 के 2 में देखते हैं जहां पर दाऊद कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे। मेरे प्रियो, धूप मसीह यीशु के नाम और कार्यों के प्रार्थना में व्यक्त मूल्य का प्रतीक है। आगे लिखा है, यदि तुम मेरे नाम से मांगोगे, यह उसका आदेश है। परमेश्वर के वचन में सच्चा विश्वास करने वाले केवल आमीन कहने के अभ्यास में हैं। किसी ने मुझसे कहा कि प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम में कहना अर्थहीन है, क्योंकि अपने मन में तो आप प्रभु यीशु के नाम में ही प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, मैं मानता हूं कि यीशु के नाम में प्रार्थना करना मात्र नाम पर्ची से अधिक है, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु यीशु के नाम में, विशेष करके जब सार्वजनिक प्रार्थना कर रहे हों, तो निश्चित करें कि आप अपनी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। मेरा मानना है कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहां वे सुगंधित धूप जला रहे हैं। अधिक शब्द और मनभावन शब्दों के कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। हमारी प्रार्थना केवल प्रभु यीशु के नाम में ही सुनी जाती है। मेरे मित्रों, यह बड़ी रोचक बात है कि उस स्वर्गदूत को धूपदान दिया गया था। प्रभु यीशु को प्रार्थना करते समय किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। 5वीं मुहर के खुलने पर, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 और 10 पद में देखते हैं, पवित्र जनों की प्रार्थनाएं चढ़ाई गई थी और प्रभु यीशु के मनुष्यत्व एवं बलिदान के कारण अब सुनी जा रही है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय के 4 पद में लिखा है, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु के कारण प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 के 5 पद में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। इसराइल का महायाजक जब महापवित्र स्थान में लहू लेकर प्रवेश करता था, तब वह अपने हाथ में धूप दान रखता था। यहां इस विधि को उल्टा कर दिया गया है, क्योंकि स्वर्ग से वह धूपदान पृथ्वी पर फेंक दिया गया है। दूसरे शब्दों में, प्रार्थनाएं धूप के रूप में ऊपर गई और अब प्रार्थनाओं का उत्तर नीचे आ रहा है। महाक्लेश में उपस्थित पवित्र जन प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर, हमारा बदला ले। पृथ्वी के मनुष्य ने पापों का दंड उठाने वाली प्रभु यीशु की मृत्यु को अस्वीकार कर दिया था, अतः अब उन्हें अपने पापों का दंड स्वयं भोगना है। महाक्लेश आरंभ होने वाला है। यहां पर हम देखते हैं गर्जन, परमेश्वर के दंड की आंधी के आगमन को यह दर्शाता है। तब है शब्द, अर्थात परमेश्वर का सोचा समझा निर्देश, न कि प्राकृतिक शक्तियों का निरुद्देश्य कार्य। परमेश्वर इन सारी बातों का संचालन करता है। आगे लिखा है बिजली, गर्जन के बाद बिजली कड़कती है। यह प्राकृतिक क्रम का विपरीत होना नहीं है। हम पहले बिजली की चमक देखते हैं, तदुपरांत गर्जन सुनते हैं। और आगे लिखा है भूकंप, महाक्लेश में पृथ्वी पर पड़ने वाले दबाव के कारण पृथ्वी प्रतिक्रिया दिखाती है, जिसे हम कपकपाती हुई भूकंप कहते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा हुआ है, तब वे 7ों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूकने को तैयार हुए। मेरे प्रियो, यह एक पावन पल है। सन्नाटे का आधा घंटा समाप्त हो गया है। पवित्र जनों की प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। आक्रमण की तैयारी के आदेश दिए जा चुके हैं। स्वर्गदूत सतर्क हो जाते हैं और तुरहियों के फूंके जाने पर विद्रोही मनुष्यों पर परमेश्वर का प्रकोप बरसने लगता है। तुरहियों का फूंका जाना न तो चिन्ह न ही भेद की बात प्रकट करता है। विपत्तियां वास्तविक विपत्तियां हैं। आज धर्मशास्त्र के अर्थ को प्रतीकात्मक कहकर टाल देना परमेश्वर के वचन को आत्मा प्रेरित नहीं मानने के बराबर है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर जो कह रहा है उससे उसके कहने का अर्थ कुछ और है। मेरे प्रियो, इन सारी बातों को हमें समझना है कि इसका अर्थ है कि परमेश्वर जो कह रहा है उससे उसके कहने का अर्थ कुछ और नहीं हो सकता है। जो वह बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, वह हमें स्पष्ट कर देता है ताकि हम उसे समझने पाएं। मेरे श्रोता मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप परमेश्वर के वचन को किस रीति से समझते हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि आप परमेश्वर के वचन पर कितना विश्वास करते हैं, परंतु आज मैं आपसे यही कहता हूं कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता है। वह आपके पास आ रहा है। आप उसे स्वीकार करें, समझें और परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि आपका जीवन परमेश्वर की निकटता में रहने पाए। मेरे प्रियो, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल को जलाना है। हुए दिल को प्रभु से मिला।